है जी।
मुरली में बोला है कि प्रजा पिता ब्रह्मा भी 100 वर्ष के बाद चले जाते हैं, बाप आते हैं 60 वर्ष के बाद, तो 40 वर्ष बाप बैठ समझाते हैं। इसका जल्द ये है कि 1976 से लेकर 2016 तक बाप रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे
बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं ना, तो बच्चा कौन है? बच्चा है कृष्ण और बाप है राम बाप। तो जब बच्चा प्रत्यक्ष होगा तो बाप का काम खत्म। बच्चे को संपन्न बनाया कौन सा बच्चा, सतवी कृष्ण है या संगम की कृष्ण? संगम की कृष्ण की जब संपन्नता होगी, उसमें जो नाम पड़ा है वो शरीर के ऊपर नाम पड़ा है या आत्मा के ऊपर नाम पड़ा है? काय के ऊपर नाम पड़ता है, शरीर के ऊपर नाम पड़ता है। तो संगम युग में दो नाम है, क्या? कृष्ण के दो नाम है। आखिरी जन्म में वो ब्रह्मा कहा जाता है, कृष्णा आखिरी जन्म में क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। और फर्स्ट जन्म में क्या कहा जाता है? कृष्ण। लेकिन कौन सा कृष्ण? सतयुग का कृष्ण कहा जाता है। और संगम युग में जिसके साथ कंस की जरासंधी, शिशुपाल आदि दिखाई है, वो कौन सा कृष्ण है? जिसका शरीर है, जिस शरीर के द्वारा कृष्ण वाली आत्मा पढ़ाई पढ़ती है और पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर सतयुग में जाकर के जन्म लेने योग्य बन जाती है। तो राम वाली आत्मा के द्वारा ही वो आत्मा प्रत्यक्ष होती है। पहले संगम युग में प्रत्यक्ष हो, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम का अनुभव करे उस शरीर के द्वारा। तो बच्चे के द्वारा जब बाप प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो बाप का कोई काम रहता ही नहीं।
में राधा कृष्ण का जन्म हो जाएगा,
वही तो बता रहे अभी।
में संगम युग राधा कृष्ण का जन्म होगा,
जो सतयुग का राधा कृष्ण है उसका शास्त्रों में गायन है, यह संगम युगी राधा कृष्ण का शास्त्रों में गायन है। सतयुग के कृष्ण का तो कोई गायन ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि हे कृष्ण नारायण वासुदेव, वो नारायण भी है वो कृष्ण भी है, वो कौन सा कृष्ण है? शास्त्र में जो भी बातें आई है वो संगम युग की यादगार है। तो सतयुग में तो कृष्ण के साथ कंस नहीं होगा, कंस ही जरासंधि होंगे ही नहीं। इस शास्त्रों में जो भी बातें आई है वो संगम युग की बातें हैं। अभी कृष्ण के साथ कंसी और जरासंधि भी अपना कार्य कर रहे हैं। और
बाबा सरजू की राधा कृष्ण का राज कब से शुरू होता है?
सतयुग में जो बच्चा पैदा होते हैं वो शैशव अवस्था के रहते हैं, साल दो साल चार साल, या पैदा होते ही बड़े होने लगते हैं, है? जैसे गाय का बच्चा है, गाय सत्व प्रधान प्राणी माना जाता है, उसका बच्चा साल दो साल पालने में पड़ा रहता है, गंध करता रहता है, उसके माँ बाप को उठानी पड़ती है या तुरंत ही दौड़ने लगता है? मिसाल है ना, वो तो जानवर है। यहाँ तो मनुष्यों की बात है। मनुष्य जब सत्व प्रधान बनते हैं तो उनका शैशवावस्था भी नहीं होती और उनका बुढ़ापा भी नहीं होता। हाँ, पैदा हुए और तुरंत ही बड़े हुए और अपना कार्य करने लगे। वहां प्रकृति उनकी मुहैया सारा कार्य करने वाली है। और
मुरली में बोला है कि प्रजा पिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे बाप है गरीब निवास
है?
बाप है गरीब निवास, बाप कहते हैं मुझे गुप्त ही रहने दो, इसमें ही मजा है।
गुप्त रहने में ये मजा है कि बाप अगर प्रत्यक्ष हो जाएगा पहले तो माला तैयार नहीं होगी। माला तैयार होने के लिए अंत तक बाप को गुप्त रहना है। जब माला तैयार हो जाए तो बच्चे प्रत्यक्ष हो गए। संस सोज फादर कहा जाता है, फादर सोज संस कहा जाता है, तो सर्वशक्तिमान कौन है पहले? तो कौन किसको पहले प्रत्यक्ष करेगा? बाप ही बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा। तो अगर खुद पहले प्रत्यक्ष हो जाए तो बच्चों को प्रत्यक्ष होने की संभावना रहेगी। इसलिए बाप अपने को गुप्त रखता है और बच्चों को पहले प्रत्यक्ष करता है, फिर बच्चे प्रत्यक्ष होकर के दुनिया में बाप को प्रत्यक्ष करते हैं।
बाबा, संगम युग में पहले माताओं से पहले सेवाग्राम शरीर छोड़ दिए थे, वैसे ब्रह्मावास से पहले ओमराधा ब्रह्मा शरीर छोड़ दिया, सत्यत्रेता युग में तो वो लोग सास सास शरीर छोड़ते, उसका शूटिंग प्रैक्टिकल में संगम युग में कब होता है?
शरीर छोड़ना माना देवान छोड़ना। जब सत्युग में साथ साथ जन्म होगा तो अच्छे की भी शूटिंग यहाँ होती है और बुरे की भी शूटिंग यहाँ होती है। जो भी सत्युग में बनने वाले पेयर्स हैं, जोड़े हैं, वो यहाँ आपसी सहयोग के आधार पर संपन्न बनेंगे या बिना सहयोग के संपन्न बन जाएंगे? 21 जन्म का जो साथी होगा वो बुद्धियोग से साथी अगर न बने तो संपन्नता आ नहीं सकेगी।
ये युगलों के लिए हुआ,
सभी युगल होंगे,
सिंगल भी हो रहे, कैचुअल भी है, जो सिंगल भी है उनका क्या?
उनकी भी बुद्धि अभी कहीं न कहीं लटक रही है। सिंगल कोई होता ही नहीं देवी देवता सनातन धर्म वालों में। तो तुम हो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के, तुम प्रवृत्ति मार्ग के बगैर रह नहीं सकते। जो राजाएं थे भारत के राजाएं खास, वो प्रवृत्ति मार्ग वाले थे या निवृत्ति मार्ग वाले थे? तो उनकी तो जन्म जन्मांतर की वो रग पड़ी हुई है प्रवृत्ति में रहने की। हाँ, संपन्न प्रवृत्ति नहीं है जो आज से अंत तक एक रस चलती रहे 21 जन्म तक। या तो उस प्रवृत्ति को ढूंढ नहीं पाया है, या तो अपने को ही नहीं पहचाना है। अपने को पहचाने तो अपनी प्रवृत्ति को भी पहचाने।
बाबा, बाप ने बोला है चार विकारों को माफ किया जा सकता है, चार विकारों को माफ किया जा सकता है, जो महाहंकारी होगा उसे माफ नहीं किया जा सकता। इसमें से पवित्र क्या बोलते हैं, काम विकार ज्यादा बड़ा है, महाकामी महाहंकारी,
अहंकार सबसे बड़ा है, तो है ही
साथ। अहंकार का मतलब है कि वो अपने को ही सब कुछ मानता है और किसी को कुछ भी नहीं मानता। तो भगवान को भी नहीं मानेगा? तो जो भगवान को ही नहीं मानेगा तो उसको भगवान का भरसा क्यों मिलना चाहिए? इसलिए अहंकारी को कुछ प्राप्त नहीं होता। बल कामी कितना भी हो भगवान माफ करेगा, कितना भी क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, भगवान माफ करेगा। परंतु भगवान के सामने अगर कोई अहंकार दिखाए कि कोई भगवान भगवान नहीं है, जैसे कंस कहता था, रावण कहता था, तो उसको कोई माफी नहीं मिलने वाली नहीं।
जो ज्ञान सूर्य करता तो अज्ञान अंधेर विनाश
है,
तो सत्युग में क्या सूर्यास्त नहीं होता?
सत्युग में चंद्रमा होगा, कम कलाओं वाला और ज्यादा कलाओं वाला चंद्रमा ही नहीं होगा तो वहां रात भी नहीं होगी। और कोई न कोई मिसाल इस दुनिया में मौजूद होना चाहिए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में ये मिसाल देखी जा सकती है कि 6 महीने वहां दिन रहता। तो अगर 6 महीने दिन रह सकता है तो आधा कल्प दिन नहीं रह सकता, रह सकता है
वो भी तो आधा कल्प ही है, उत्तरी ध्रुव से
दक्षिण ध्रुव। बाबा मुरली में बोला है कि प्रकृति मार्ग वालों को मालूम है कि भगवान किसी न किसी रूप में यहाँ जरूर आवेंगे।
किसको किसको मालूम है?
प्रवृत्ति मार्ग वालों को मालूम है कि भगवान किसी न किसी रूप में यहाँ जरूर आवेंगे, लेकिन जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं और जो भक्ति मार्ग वाले हैं भगवान को तो वो भी जानते हैं, तो अंतर क्या पड़ता
है? जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हजारों वर्ष के बाद फिर भगवान आवेंगे जब कलयुग का अंत होगा। क्या अभी तो कलयुग का आदि चरण है, अभी तो 5000 वर्ष ही हुए हैं द्वापर युग खत्म हुए, 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध हुआ था कलयुग द्वापर के अंत में, तो वो तो बहुत लंबा कर देते हैं। अब गृहस्थी में पड़े हुए हैं गृहस्थी, वो बेचारे बहुत दुखी हो रहे हैं, मेहनत भी सारी करना, अपनी मेहनत भी करते हैं और सन्यासियों के लिए भी मेहनत करते हैं।
ये चित्र बने हैं ये झाड़ और मूर्ति को, पहले तो यही चित्र थे, साठ में यही बने थे में। तो इस चित्र में जो ये साक्षात्कार से बने हुए ना दृष्टि से,
हाँ जी,
तो इस चित्र में ये जो त्रिमुख तीन लोगों का जो चित्र दिखाया है, तो इसके अंदर तो ऊपर एक छोटी सी बिंदी है, उसके नीचे तीन बिंदी है, उसके नीचे दो बिंदी है, ये क्या जाहिर करती है? हमें इसका समझ अभी तक आई,
ये आत्मा की स्थिति दिखाई है कि कौन सी आत्मा है, किस स्टेज वाली है, कौन सी कितनी ऊंची स्टेज वाली है, कौन आत्मा है कितनी नीची स्टेज वाली है।
ऊपर एक दिखाई, उसके तीन बिंदी, दो, ऐसा क्या मतलब?
जो एक बिंदी दिखाई है वो एक ही एक है, जिस एक को याद करना है, उसके बाद है फिर तीन बिंदियां, तो वो सेवा वो तो ज्योति बिंदु है, वो किसी के द्वारा तो प्रत्यक्ष होगा, और तीन बच्चे हैं तीन कैटेगरी के, ऊंचे से ऊंची कैटेगरी है शंकर निराकारी स्टेज के बिल्कुल नजदीक, फिर मध्यम स्टेज है विष्णु, न ज्यादा निराकारी न ज्यादा साकारी, और फिर नीची स्टेज है ब्रह्म। निराकारी स्टेज तो बनती ही नहीं, तो डायरेक्ट बाप से उनका पढ़ना होता ही नहीं, और तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से पढ़ने वाले हो, तो जरूर निराकारी स्टेज भी बनती होगी। निराकारी स्टेज है अर्थात आत्मा रूपी सुई की बेसिकली तुम्हारी कट उतरती है, तब तुम डायरेक्ट बाप से सीखते हो। कोई तो बेसिक नॉलेज में आज तक पड़े हुए हैं, कहते हैं बिंदी को कैसे याद करें, उनकी बुद्धि में बिंदी आती ही नहीं, जब आता है याद तो भगवान के नाम से कौन याद आता है, ब्रह्मा का साकार चोला याद आ जाता है। तो रचना भी तीन कैटेगरी की हो जाती है, जिसको भक्ति मार्ग में कहते हैं शैव संप्रदाय, दूसरा वैष्णव संप्रदाय, और तीसरा ब्रह्म समाधि। फाउंडेशन कहाँ पड़ रहा है?
ये जो 9,16,108 से सब जो स्टार्ट होने वाला है,
नहीं 9,16,108 जो है वो सतयुग के पहले जन्म की संपन्न टोटल, सतयुग का पहले जन्म का जब आहुति होगी पूर्ण, उस समय ये आबादी होगी।
तो इनमें जो जो पैदा जो बच्चे पैदा होंगे जो 4.5 इस सीरीज से जाएंगे सतयुग में, तो वो जो 4.5 बच्चे पैदा होंगे,
4.5 लाख
जो बच्चे पैदा होंगे, उनमें ये जो वैदर्भी आत्माएं हैं, ये पैदा करने वालों में
की लिस्ट में होंगे, लेकिन उनके ऊपर दूसरे धर्म का छिलका होगा। जिनके ऊपर दूसरे दूसरे धर्म का नीचे से नीचे धर्मों का छिलका होगा, वो पहले जन्म में भी नीची स्टेज में आवेंगे, शुरुआत में नहीं आवेंगे। शुरुआत में कौन आवेंगे? जिनके ऊपर किसी भी धर्म का कोई छिलका नहीं चढ़ा, सिर्फ अंतिम जन्म में आकर के माया उनको थोड़ा प्रभावित करती है।
कार हमारा पैसा कब छोड़े?
जब हम विपरीत कर्म का पीछा छोड़े, हम अपने से पूछे कि जो श्रीमत के विपरीत कर्म है उनसे हमने पीछा छोड़ाया है?
वो छोड़ते नहीं।
अरे कोई ने पेड़ को पकड़ लिया और चिल्ला रहा है, अरे हमको पेड़ ने पकड़ लिया, छोड़ाओ, ये हमको कब छुड़ा देगा? तो ये ठीक है क्या
बाबा? एक ये है बाबा, दिल्ली जाता है कि आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पार्ट ढूंढा हुआ है, जो 84 जन्म लेने वाले उनका 84 जन्म ढूंढा, जो काम लेने वाले काम ढूंढा हुआ।
बिल्कुल।
तो ये जो बेकारी संस्कार हमारे बनते हैं कलयुग द्वापर में, जब सतयुग स्टार्ट होगा तो वो गौण हो जाते होंगे, खत्म थोड़े हो सकते हैं, क्योंकि ढूंढा हुआ है,
ढूंढा हुआ है, मर्द मर्द हो जाता है, मर्द हो जाता है। 2500 तक वो मर्द रहेंगे, 2500 वर्ष के बाद जैसे ही उनको उकसाने वाला कोई आएगा, तो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आते हैं उकसाने वाले, और हम सबसे पहले उकस के आगे आ जाते हैं।
हाँ जी, और सत्यों के अंदर वो ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि उस वक्त परमात्मा द्वारा हम आत्मस्थिति में।
हाँ जी, और
बाबा मुरली ने बोला है कि फरकावाद में माधव को बहुत मानते हैं,
है?
यूपी को साकार और निराकार की डबल लॉटरी मिली हुई
है, साकार में भी मिला हुआ है
और निराकार भी,
और निराकार बाप तो साकार में है ही,
है? इसका क्या अर्थ
है? अरे अर्थ तो आपने खुद ही बता दिया कि यूपी वालों को चाहे ले या न ले वो दूसरी बात है, लेकिन मिला हुआ है। कौन मिला हुआ है? साकार भी मिला हुआ है, साकार ने भी यूपी में जन्म लिया है, और जो बेहद का जन्म है, बेहद का जन्म वो भक्ति मार्ग में कहाँ माना जाता है? वो भी यादगार यूपी में बनी हुई है, या तो वाराणसी यादगार बनी हुई है, शंकर का स्थान माना जाता है, शिव शंकर भोलेनाथ का स्थान, काशी विश्वनाथ गंगे, या तो अयोध्या मानी जाती है राम जन्मभूमि, या तो कृष्ण जन्मभूमि मथुरा मानी जाती है। तो तीनों ही रूपों में भगवान का जन्म रूपी प्रत्यक्षता कहाँ मानी जाती है? यूपी में मानी जाती है। इसलिए महाभारी महाभारत युद्ध भी जो होना है, नहीं यूपी में नहीं है, है तो नजदीक, नहीं दिल्ली में भी नहीं है। महाभारी महाभारत युद्ध दिखाया है कुरुक्षेत्र के मैदान में, और कुरुक्षेत्र का मैदान है हरियाणा के नजदीक, माना यूपी का बॉर्डर है।
महाभारी महाभारत युद्ध तो अपने अंदर ही होगा, कारों से युद्ध है,
अपने अपने अंदर तो होगा, लेकिन यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। क्या बड़ा महाभारत कहाँ होगा? उस महाभारत में ज्यादा खेल दिखाने वाले होंगे यूपी के, क्योंकि जो जहां का होता है, जैसे नेहरू जी इलाहाबाद के थे, उन्होंने लंबे समय तक राज्य किया, तो वो जीतते रहे, वो किस स्थान से जीतते रहे? इलाहाबाद से ही, हमेशा उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जीते, तो इलाहाबाद वालों ने ही उनको क्यों ज्यादा अप्रिसिएट किया? क्योंकि वहां की पैदाइश थे, वहां के लोगों का इस बात का फख्र था कि ये हमारे देश के हैं। ऐसे ही यूपी वालों को जब पता चलेगा कि भगवान का साकार रूप कहां होता है, तो उनको नशा चढ़ जाएगा। इसलिए बोला है व्यक्तवाणी में, यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है, अभी दिखाया नहीं है, छुटपुट कहीं दिखा रहे हैं थोड़ा
थोड़ा दिखा रहे हैं, अभी भी दिखा रहे
हैं,
अभी भी दिखा रहे हैं।
हाँ जी हाँ जी। और
जब उसमें ये दिखाता है कि आत्मा में पहले ही उसके पार्ट लिखे होते हैं कि इसमें लाइफ में क्या क्या करना है, फिर जब उससे कोई गलत काम हो जाता है तो आत्मा को क्यों दोष दिया जाता है?
क्योंकि दोष देने की जरूरत नहीं, बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बननी ना। आत्मा में 63 जन्मों का सारा 63 जन्मों का हिसाब किताब भरा पड़ा है, जैसा 63 जन्मों में जहां जहां जैसा पार्ट बजाया है वो अभी संगम युग में सिर्फ रिपीट हो रहा है, शूट हो रहा है, रिहर्सल हो रही, दोष क्यों देना? तो अज्ञान तो है,
लेकिन प्रशांत तो बाबा है ना, पहले हम ड्रामा को आगे थोड़ा रख सकते हैं, ड्रामा तो पीछे है।
पुरुषार्थ करने वाली बात इसलिए है कि हमको पता नहीं है कि हमने क्या पार्ट बजाए। जब हमको पता ही नहीं है तो हम क्यों ना पॉजिटिव बजाएं, नेगेटिव क्यों उठाएं? खाने के लिए तो कभी नहीं पूछते, कहते कि खाना होगा तो खा लेंगे।
बाबा, कोई भी मकान होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग होते थे, इनकम टैक्स वालों को पता चल जाता ना, फलाना आश्रम है, फलाना बिल्डिंग है, वो अपने आप पहुंच जाते। उसी रीति जो एक दो मंजिल के अन्नस होगा, जो एक दो मंजिल की एनएस जो है,
एक दो मंजिल का
घर जो मकान हो गया एनएस का, जो एनएस नया दुनिया है जहाँ बहने रहते हैं,
नया संगठन,
हाँ जी, वो तो ब्राह्मण दुनिया से तो गुप्त है, तो बाहर दुनिया से भी वो गुप्त है।
जब ब्राह्मणों की दुनिया में ही गुप्त है तो बाहर की दुनिया वाले तो गुप्त हो गए।
कोई
बाहर की दुनिया वालों के लिए तो पहले ही बोल दिया, 2000 के आसपास ही अपने कवाड़ियों में बोल दिया, बाप बच्चों की नजरों में प्रत्यक्ष हो गए और दुनिया वालों की नजरों में गुप्त हो गए।
मतलब कोई भी आश्रम में अपने आप इनकम टैक्स वाले पुलिस आते हो, वहाँ कोई आते भी नहीं, उनको पता भी नहीं हो गया कुछ लोग रहते हैं, इतना लोग
है। आवेंगे भी तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा ये कौन है।
वहाँ की जो हेड है माँ, उनकी लेटर से आते थे, उस रीति भी सभी बच्चों से कनेक्शन होता था। अभी जो बच्चे नया नया निकले लेटर्स दूसरों के हाथ से भी आ जाते, तो माँ से कनेक्शन कैसे होगा फिर इनका, जो सुनवा से अभी भी निकलते
हो? बाबा के साइन नहीं होते हैं क्या? जो कनेक्शन बुद्धि का जोड़ना है वो माँ से और बच्चों से और भाइयों से जोड़ना है या बाबा से जोड़ना है? तो जो भी लेटर्स आते हैं उनमें बाबा का निशान नहीं होता है? काम करने के लिए बाबा किसी को भी निमित्त बनाए। और
बाबा जैसे बोला है ब्राह्मण को 84 जन्मों की कहानी का पूरा पता होना चाहिए।
हाँ जी,
तो ये पता सभी रेजुलेशन के बाद होगा या पहले ही होगा?
रामकृष्ण वाली आत्माओं को पहले होगा या पहले हो रहा है या नहीं हो रहा है?
उनको तो हो रहा है, राम और कृष्ण।
जब उनको हो रहा है तो दूसरों का नंबर नहीं ले सकता है?
दूसरे भी मेहनत करेंगे तो हो जाएगा।
मेहनत तो करेंगे ही, नंबर बाहर पुरुषार्थ अनुसार। हाँ जी, ड्रामा करवाएगा। और
कि जो बच्चे बाप से प्रश्न करते हैं वो संपूर्ण नहीं कहलाएंगे।
हैं?
जो बच्चे बाप से प्रश्न करेंगे,
प्रश्न भी दो तरह के होते हैं,
वो संपूर्ण,
एक होता है जिज्ञासा शांत करने के लिए, क्या सर्विस फील्ड में जाते हैं हम, बहुत सी बातों का सही समाधान नहीं दे पाते हैं, अंदर अंदर दिल में खाता है कि हमने शायद ये बात का जवाब ठीक नहीं दिया, तो उस बात को पूछा जाता है, तो बाबा मना करते हैं क्या? बाबा तो मना नहीं करते, बाबा तो कहते हैं कि अंदर जो बात है वो बाहर निकालो, नहीं अंदर अंदर खाती रहेगी, तो उस आधार पर जो पूछते हैं वो तो ठीक, लेकिन जो विरोध करने के लिए पूछते हैं कि हम डाउन कर दें, वो गलत है। उसको दिखाया है शास्त्रों में कि देवताओं ने पूंछ पकड़ी, मना फालू किया, और असुरों ने मुंह पर। आपने इस मुरली में ऐसे कहा था, आपने इस सभ्यवाणी में ऐसे कहा था, तो जो मुंह पकड़ते हैं वो है असुर, और जो मुंह पकड़ने वाली मादा जिनके अंदर नहीं है लेकिन फॉलो करने वाले हैं, जो कहो तो फॉलो करना है, वो देवता ही।
मतलब अपने समझाने के लिए फील्ड में जाना है।
हाँ जी, अभी
प्रश्न तो वही पूछा था जो मुरली में आया
है,
जो मुरली में सुनाया गया वही तो प्रश्न पूछ सकते हैं।
हाँ, तो प्रश्न पूछने के लिए मना कहाँ है?
मैंने सोचा कि जो प्रश्न कहा मुरली में कि जो बच्चे बाप से प्रश्न पूछेंगे वो संपूर्ण नहीं होंगे, तो इसलिए पूछने
प्रश्न पूछने वालों का क्लास में थोड़ा नंबर है या ज्यादा नंबर? जो प्रश्न पूछने वाले हैं उनकी संख्या कम होती जाती है या ज्यादा होती जाती है? कम होती जा रही है। कोई कोई भाई तो ऐसे हैं कि हाथ में कागज भी नहीं रखते हैं और दो दो तीन तीन घंटे लगातार प्रश्नों की बौछार लगी रहती है। इससे क्या साबित होता है? कोई उनमें भूत आत्मा प्रवेश कर गई। सामान्य स्थिति में वो इतना ज्यादा बोलने वाले भी नहीं है, जब वो आत्मा प्रवेश करती है तो बिना किसी कागज पत्र के प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न झड़ी लगा देती
है।
तो जो भूत प्रेत आत्माएं हैं वो ज्यादा पाप कर्म करने वाली होती है या कम पाप करने वाली होती है? ज्यादा पाप करने वाली आत्माएं जो प्रवेश करती है उनकी बात समझ में पूरी आती नहीं है, पूरा कोर्स करते नहीं है ठीक से, और वो प्रवेश होकर के दम चक्कर मचाते हैं, वो असुर है। और
बाबा, घर में मेरे को बच्चों ने क्वेश्चन किया, जो गोबर नहीं होता, गोबर के कोई माता है ना, पोपले बनाते हैं।
हाँ जी, हाँ जी।
बनाते हैं तो भगवान का नाम जाप करते हैं, तो किसी ने उसके पोपले उठा दिए, तो वो कैसे पड़ोसन को बोलती है तूने मेरे पोपले उठाए हैं, तो मेरे को बताओ मैं अपने पोपले लेने आया तेरे घर से। वो कैसे पहचानती है? वो पोपलों को अपने कान पे लगाती है और पहचान पहचान में अपनी जगह रखती है, यानी कि उसको भगवान का जो जाप किया उसमें सुनाई देता है। वे हद में ऐसी क्या बात है जो
ये क्या कह रहे?
कहने का मतलब है कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिनको मुझे
गोवर्धन
नहीं बने होते हैं, ये
उपले उपले
वो बने होते हैं, कोई उड़िया उठा के उसके ले जाती है, तो दूसरी जो होती है वो जाती है कहती है कि उसने जो भी बनाए होते हैं भगवान के नाम लेकर के बनाए होते हैं, जब जाती है वो पहचान जाती है, तो वो कहते हैं कि वो कैसे पहचान जाती है?
पहचान जो क्या, जब हाथ से थापा जाएगा तो हाथ के निशान नहीं आ जाएंगे? कोई का हाथ छोटा होता है, कोई का हाथ बड़ा होता है, कोई की उंगली छोटी होती है, कोई का ऊंटा मोटा होता है।
उसने बोला भगवान का नाम कैसे आया उसमें से, नाम कैसे आ गया गोबर में?
कोई कागज पत्र लिखा जाता है तो पहले और आज भी ऐसा होता है, अंगूठा लगाते हैं, नाम लिखना जानते नहीं, वो कैसे पहचाने जाते हैं? अंगूठे की निशानी आ जाती है ना।
बच्चों ने कहानी कहीं से सुनी होगी, पढ़ी होगी ना, वो मेरे से क्वेश्चन करने लगे।
अच्छा, हाँ, बड़े बड़े मंदिर हैं पुराने पुराने, उनमें गरारी के ऊपर वो माला रखी रहती है 16,000 की, चार चार आठ आठ लोग इकट्ठा पकड़ करके गरारी में माला को खींचते हैं। ऐसे यहाँ ज्ञान में भी आगे चल करके होगा कि अभी तो एक एक को बैठ करके समझाता रहा, लेकिन एक से नहीं उठेंगे, वो देहाभिमानी सांडे हैं, तो चार चार आठ आठ मिलकर के जाएंगे तो उनके ऊपर असर पड़ जाएगा।
और बाबा गिलहरी ने कैसे किया वो राम की, जब उसने भी सेवा की ना,
और गणेश ने कैसे सेवा की? गणेश कोई सूंड वाला था है? कोई सूंड वाला जानवर ऐसा था?
बढ़ा दिया
नहीं, एक मिसाल बताई है गणेश की कि ऐसे भी देवताएं होते हैं जिनमें देह अभिमान का पुट ज्यादा होता है फिर भी सेवा करते हैं, इसलिए सेवा का उनको मेवा मिल जाता है। कुछ पवित्रता को धारण किया है तो उनकी पूजा चलती चली आ रही है। ऐसे ही कोई गिलहरी की बात नहीं है, वो भी एक प्राणी है, उस तरह का पुरुषार्थ करने वाले भी कोई है, दिखाते हैं शास्त्रों में कि जब राम ने पुल बांधा तो बंदर तो अपने बड़े बड़े पत्थर ले जाकर के पुल में डाल रहे थे। गिलहरी ने सोचा मैं कैसे पत्थर उठाऊं, तो पत्थर तो उठा ही नहीं सकी, तो बार बार पानी में नहाने जाती थी, भीग करके आती थी और बालू में जाकर के अपनी लोटपोट होकर के बालू अपने बालों में उलझाए लेती थी और जाकर के पुल पर डाल आती थी। तो कोई खास सहयोग तो नहीं हुआ, लेकिन भावना देखी जाती है, भावना देखी, जितनी शक्ति है उसने अपनी सारी शक्ति पुल बनाने में लगा दी। तो ऐसे यहाँ भी ऐसी आत्माएं हैं जिनके पास न तन की शक्ति है, क्या कन्याएं माताएं हैं तो तन भौंडा है, बूढ़ा शरीर है, कोई पूछने वाला नहीं है, तन के हिसाब से कुछ सेवा भी नहीं कर सकते, न धन है उनके पास, मन जो है वो सारा गृहस्थी में खप गया, बच्चों की पैदाइश में, मन की पावर भी नहीं, बुद्धि की पावर भी नहीं। ऐसी माताओं को बाबा आगे रखता है और शाबाशी देता है, क्या किसके लिए आया हुआ हूँ? माताओं के लिए आया हुआ हूँ। अभी अभी मुरली बोला, कोई एक रुपया देता है, कोई सौ रुपया देता है। एक रुपये देने वाले के पास दस रुपये थे और दस रुपये में से उसने एक रुपया दिया, और जिसने सौ रुपये दिए उसके पास कितने थे? दस गुना थे, और उसमें से सौ रुपया दिया तो भी दोनों का बराबर भाग्य बनता है। ऐसे ही यहाँ दिल देखा जाता है, क्या ये नहीं देखा जाता किसने कितना दिया। जितना भी दिया दिल से सतो प्रधानता पूर्वक दिया, ऐसा तो नहीं देते समय दिल के अंदर आया पता नहीं भगवान का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चेक दे दो। अगर नहीं भी भगवान का काम होगा तो हम कहेंगे हमने लोन दिया था इनको, देखो ये प्रूफ है हमारे पास। और
बाबा जैसे कोई सोल किसी में प्रवेश करती है तो उसका मन बुद्धि पर कंट्रोल होता है, जो सोल प्रवेश करती है और जिसमें प्रवेश करती है क्या उसे पाप पुण्य लगता है?
उसका पुरुषार्थ तो रुकता है, हाँ? उसको उद्विघन डालती है, जो सेवा वो कर सकती है उस सेवा को डिसर्विस में बदल देती है, तो जागता हुआ ना। और
नाग होती है,
नाग
हाँ
नग वो तो बहुत मिल जाते हैं, हाँ पुखराज की कोई वैल्यू नहीं क्योंकि बहुत बहुत तादाद में मिल जाते हैं, चाहे जितने ले लो। नहीं वो सिर्फ जो कीमती रत्न है उनके साथ रखा जाता है तो वैल्यू है, उनकी जो ज्यादा वैल्यू वाले हैं उनकी वैल्यू को नापने के लिए पुखराज रखा गया है, नहीं तो वैल्यू बन रही है। और
जो बच्चे उधर रुकावाद में भर्ती के लिए जाते हैं,
हाँ जी,
और उधर जाकर वो किसी वजह से जैसे कि दरवाजा बंद करने से घबरा जाते हैं और वो भर्ती नहीं कर सकते
है,
उनका क्या फ्यूचर होगा?
दरवाजा बंद करने से
घबरा जाते
माना
सफोकेशन हो जाती है,
मेरी अपनी ही बात है, पर्सनल बात, मैं गया था फरुखाबाद में भट्टी के लिए,
हाँ?
तो जैसे वो गेट बंद करते हैं ना,
हाँ?
तो मैं घबरा गया, और फिर डॉक्टर के पास गया तो एकदम बीपी मेरा काफी हाई हो गया, फिर मैं उधर से वापस आ गया।
बीच में ही वापस आ गए? पहले दिन वापस आ गए, फिर दोबारा गए?
दोबारा गए
हैं?
दोबारा नहीं जाते।
तो अच्छा हुआ दोबारा चले गए, दोबारा गए ही नहीं। और फिर तो जब आपकी भट्टी नहीं तो आपको क्लास में ही नहीं आना तब तक है। देखो वही बात हो गई, कोई सोल का प्रभाव हुआ होगा तो वहाँ नहीं प्रवेश करने देती, नहीं तो वहाँ जाने वाले तो भयंकर गर्मी पड़ती है और उनको पंखे की भी दरकार नहीं है, फिर बड़े मस्त रहते हैं। हाँ तो कोई सोल ऐसी आ गई को उसको वो पसंद नहीं है, जब उसने प्राण छोड़ा होगा तो उसको बंद जगह में रखा गया होगा तो घुट घुट के मर गया, तो उसे उस जगह में जाने मात्र से ही वो परेशानी पैदा हो जाती है।
ऐसा प्रवेश नहीं हुआ लेकिन ऐसा प्रभाव उनके ऊपर है,
वो दोबारा कोई बात
है। हारिए ने हिम्मत विसारिए न राम।
बाबा सफोकेशन तो मुझे भी मिली बहुत ज्यादा
है,
हार्ट का ऑपरेशन हुआ एक साल हुआ
है,
तो मैं मुझे प्रॉब्लम तो बहुत आई, मैं भी सोचता था मन
हाँ, लेकिन
आवाज थोड़ी सी मिले, आवाज थोड़ी सी मिले,
फिर क्या हुआ? पार कर गए, पार कर गए। हिम्मत है बच्चे, मरे देवा 80-80 साल की बुढ़िया अमरनाथ पे यात्रा करने चली जाती थी, पहले तो इतने साधन भी नहीं थे तो भी 80 साल की बुढ़िया यात्रा करके वापस आती थी खुशी खुशी।
मेरा कहने का भाव यह है सफोकेशन ज्यादा है वहाँ पर,
अब जहाँ जहाँ जहाँ
हवा का स्तर कम है,
जहाँ 50 आदमियों की जगह है और वहाँ 500 इकट्ठे होंगे तो सफोकेशन होगा नहीं, लेकिन अंदर की खुशी एक ऐसी चीज है, अगर ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठ गया तो खुशी इतनी बढ़ जाती है, बाप की याद इतनी बढ़ जाती है कि वो सफोकेशन अपोकेशन कुछ महसूस नहीं होता। जैसे बाबा ने मुरली में बोला कि जिनको श्वास की बीमारी थी, दमा की बीमारी थी, उनको ढोढा और रोटी खिलाया गया, बाजरे की रोटी और छाछ ही दिया गया कई दिन तक और सब चंगे हो गए। तो ये कौन सी खास बात थी? उस समय नशा, उनको इतना नशा चढ़ा हुआ था। ज्ञान को भी बल कहा जाता है, अच्छी तरह ज्ञान बुद्धि में बैठ जाए तो सात्विक स्टेज बन जाती है, तो सात्विक स्टेज में ये दिखाई नहीं पड़ता कि यहाँ गर्मी है कि यहाँ सर्दी है, पंखा है या नहीं है, या बंद जगह है या खुली जगह है, लेकिन खुशी उनको पार ले जाती
है। ये तो बात ठीक है, लेकिन गर्मी वो चीज है, सर्दी वो चीज है, हवा वो चीज है, गर्मी के साथ आदमी जी सकता है, सर्दी से भी जी सकता है, लेकिन हवा के बिना नहीं जी सकता।
अभी घोंघाट होगा विनाश के टाइम पे, तब क्या करेंगे? जीने वाले जी जाएंगे।
बाबा जो पार्टी जाते हैं ना उनको समझा के भेजा जाता है,
हाँ जी,
उधर जाते हैं वहाँ के जो भाई होते हैं वो बताते हैं कि आज से दरवाजा बंद है, बाहर कर्म नहीं रखना, शादी नहीं रखना, उस ढंग से वो समझाते हैं, वो थोड़ा घबराते हैं, भाई लोग का ही जरा कम्प्लेन आते,
पहले से ही यहाँ से समझा के ले जाओ ना के मुरली में बोला है बाहर कदम भी न रखे, किसी को फोन भी न करे, बाहर की दुनिया में बुद्धि भी नहीं जानी चाहिए, ऐसा फाउंडेशन हो,
पहले समझाया।
हाँ जी,
इस बात में माताओं को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऊपर भी जाते,
माताएं तो जिंदगी भर अंदर रहने की अभ्यासी हैं, उनको क्यों प्रॉब्लम पैदा होगा? भाई लोग तो बाहर की दुनिया में घूमने फिरने वाले
बाबा, पर्सनल बात तो नहीं है, जम्मू वालों के हिसाब से कोई पूछ रहे थे परिवार, जब संगठन जम्मू नहीं जा सकते तो पठानकोट वाले पठानकोट में संगठन कर सकते हैं ना, जब पठानकोट नहीं जा सकते तो जम्मू वाले जम्मू में संगठन कर सकते हैं।
हाँ, क्या हुआ? अरे कहीं भी संगठन में बैठना है, संगठन में बैठना माना वाइब्रेशन मिलेगा, संगठन की पावर मिलेगी,
क्योंकि बहुत लोग बिजनेस करते, दुकान बंद करके जा नहीं पाते, तो वहाँ की वहाँ ही करने में एक दो घंटा टाइम लगते हैं। अगर वहाँ से दूर जाएंगे और लोगों को 5-6 घंटे हो जाते हैं।
एक तो अपनी त्याग तपस्या सबकी अलग अलग है, अपना अपना नशा अलग अलग है। कोई को तो इतना नशा चढ़ जाता है कि अपना सब धंधा दोरी छोड़ करके 24 घंटे संगठन में ही घुस जाते हैं। वो कैसे घुस जाते हैं?
नशा अपना
अपना अपना नशा अलग अलग है। और
बाबा
हाँ जी,
सर्वशक्ति की लाइफ के सदा साथ रहेंगे तो माया पास नहीं आ सकती। तो घर में छोटी छोटी प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर माया हमारे पास कैसे आती है?
आत्मिक स्थिति में नहीं रहते, आत्मिक स्थिति में रहे तो सब समस्याओं का समाधान है आत्मिक स्थिति। देवान में आते हैं तो छोटी समस्या बड़ी लगती है। आत्मिक स्थिति में रखे और वो अभ्यास पक्का हो जाए तो जैसे परमात्मा हमारा बाप हमारे साथ है, सब समस्याएं ढीली हो जाती है।
जब सारा बीत जाता है आत्मा बाद में याद आती
है। वो भी 63 जन्मों का हिसाब किताब है, बनी बनाई बन रही
है।
कोई जरूरी नहीं कि जो भी आते हैं सो सब बेसिक से ही आते हैं। हाँ, कोई ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट भी आते हैं, लेकिन ये जरूर है कि पूर्व जन्म में बेसिक में जरूर रहे होंगे।
तो बेसिक में ज्यादा लोगों का आदत हो जाता है, वहाँ टीचर बनने ले जाते हैं मधुबन के लिए। तो यहाँ एडवांस में आते हैं बोलते हैं कि हमको एक टीचर चाहिए पार्टी ले जाने के लिए, बेसिक के हिसाब से पूछ लेते हैं।
ये तो राजा बनने वाली क्वालिटी की आत्मा ही नहीं है। जिनका फाउंडेशन ही आधार बने लेने का है, आधीन बने हुए हैं शुरुआत में ही, फाउंडेशन में ही। फिर वो रास्ते के हिसाब से अरे आदमी कहाँ का कहाँ चला जाता है। बिलायत जाने वाला उसको रास्ते में कोई ले जाता है साथ में? बिलायत जाने वाले बिलायत चले जाते हैं, उनको कोई रास्ता बताने के लिए जाता है क्या? माताएं नहीं जाती हैं, कन्याएं नहीं जाती हैं विदेश में? है सब आधीन बनाने वाली बातें हैं। इसलिए बाबा बताते हैं कि आधीन बनाने वाले हैं अनेक और स्वाधीन बनाने वाला है एक। अरे पार्टी में जो होशियार हो उनके हाथ में बागडोर सौंप दो, पार्टी ले जाओ। क्लास में भी तो कोई ना कोई मॉनिटर बनाया जाता है ना। और
बाबा एडवांस में एक दो बार गया था, मैं जैसे जो मैं एक दो बार गया था एडवांस में सीधे आगे तो गया।
बेसिक में एक दो बार गए और उसके बाद एडवांस में आ गए। हाँ, कोई कोई बच्चे बहुत शूढ़ बुद्धि होते हैं, या कोई कोई का पूर्व जन्म का हिसाब किताब ऐसा होता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने बेसिक नॉलेज पढ़ ली, थोड़ी सी रह गई, सो यहाँ बेसिक में एक दो दिन चले गए और एडवांस में आ गए। हाँ,
जो बच्चे सीधे ही एडवांस में आ जाते हैं
उनका पूर्व जन्म का हिसाब किताब है सारा ही। पूर्व जन्म में बेसिक में रहे होंगे, बेसिक पढ़ाई पहले ही पढ़ ली
है।
बेसिक पहले पढ़नी जरूरी पड़ती है।
अरे प्राइमरी में काका ए बी सी डी पढ़ेंगे नहीं और बीए में कैसे पढ़ने लगेंगे? वो तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, भले घर में पढ़े माँ पढ़ाए, पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी बेसिक। और
जो यहाँ ट्रैक्ट भी आते हैं पहले बेसिक ही समझते हैं फिर ही चलते हैं।
बाबा एक कन्या पूछ रहे हैं कि सब कुछ सीख के मैंने अभी तो सुख सुविधा आ गया ना एडवांस पार्टी में, हर जगह मिनी मधुबन है,
हर जगह तो नहीं
मतलब हर ज्यादा से ज्यादा 2000 के बाद तो मिनी मधुबन में कुछ दिन एक साल दो साल रह के सीख के सरेंडर होना चाहे या डायरेक्ट जाकर के शरण रोज
लगाना अच्छा है। तो बाबा ने मुरली में बताया है सबसे ज्यादा अच्छा है तुरंत दान, माँ कल्याण बाबा कहते हैं अगर सोच विचार के आएंगे, देखभाल के आएंगे तो बाबा भी बरसा सोच विचार के देंगे, देना चाहिए नहीं देना चाहिए।
बाबा जनरल टेस्ट जो है ना अपना देखिए गली मोहल्ले वालों को हम सुना देते हैं थोड़ा उनकी बात
है
जनरल टेस्ट जो अपने सीडी वगैरह
हाँ
अपने गली मोहल्ले वालों को थोड़ा उनकी बात करते
हैं। हाँ जो ज्ञान में नहीं चलते हैं उनको जनरल टेस्ट सुना हाँ जी अगर वो सुनते हैं तो उनके ऊपर डायरेक्ट असर पड़ जाएगा सीधा, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे दक्षिण भारत में बहुत निकले जो डायरेक्ट कैसेट ही सुन करके निकले और बहुत तेजी से अच्छे चले।
बाबा अभी जो आत्माएं परम धाम से आ रही हैं वो जन्म कहाँ लेती हैं?
यही इसी दुनिया में जन्म लेती है और कहाँ लेंगी?
हैं? गरीबी में लेती हैं या अमीरी?
ये कोई जरूरी नहीं, गरीब वगैरह जो पहली आत्मा आएगी वो तो अच्छा ही जन्म लेगी, खराब जन्म लेगी। सात्विक आत्मा आती है या तमो प्रधान आती है? सतो प्रधान आत्मा सत्य धाम से आती है।
पहले जन्म तो उसका अच्छा ही होगा।
है
पहले जन्म तो अच्छा ही होगा,
पहले जन्म में सबकी सदगति है। और एक रिपोर्टर्स होते हैं वो घड़ी घड़ी एक एक सेकंड का समाचार देते रहते हैं, ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है वैसा हो रहा है। और एक होते हैं कंप्लेंट करने वाले, उनको कोई प्रकार के दुख हो गया, तकलीफ हो गई, किसी से परेशानी है, कोई उनको दुख दे रहा है तो कंप्लेंट करते हैं, चलो भाई पुलिस में रिपोर्ट करके आओ, तो उसे कंप्लेंट कहा जाता है। चलो हो गया, जम्मू एक घंटे से आगे नहीं जाता है।